ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। अख्तियार द्वारा नेपाल टेलीकॉम के तत्कालीन प्रबंध निर्देशक सुनील पौडेल और वर्तमान प्रबंध निर्देशक संगीता पहाड़ी सहित 18 लोगों के खिलाफ विशेष अदालत में मामला किया गया दर्ज। महाराजगंज स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में लिंग परिवर्तन से संबंधित शल्य क्रिया हुई सफलतापूर्वक पूरी। सत्ता साझेदार दलों के बीच कोई मतभेद नहीं है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया स्पष्ट। और भारत के मणिपुर राज्य में जातीय तनाव बढ़ने के बाद कुछ जिलों में लगाया गया कर्फ्यू और 5 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद। अब समाचार विस्तार से। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने नेपाल टेलीकॉम के तत्कालीन प्रबंध निर्देशक सुनील पौडेल और तत्कालीन प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत हाल प्रबंध निर्देशक संगीता पहाड़ी सहित 18 लोगों के खिलाफ विशेष अदालत में मुकदमा दर्ज किया है। आयोग के प्रवक्ता राजेंद्र कुमार पौडेल के अनुसार कंपनी के जीएसएम मोबाइल, फाइबर इंटरनेट, लीज्ड लाइन, वायरलाइन और वायरलेस सेवाओं के बिलिंग में गैरकानूनी तरीके से खरीद बिक्री कर अनियमितता की गई थी। आयोग ने आरोप लगाया है कि उपकरण खरीद के संबंध में सार्वजनिक संपत्ति का हनन हुआ है। मामले में नेपाल टेलीकॉम के पूर्व प्रबंध निर्देशक सुनील पौडेल, वर्तमान प्रबंध निर्देशक संगीता पहाड़ी, पूर्व प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा क्षेत्री और वित्तीय अधिकृत राजेंद्र क्षेत्री सहित 18 अधिकारियों के खिलाफ 33,48,00,000 रूपये से अधिक की क्लेम्ड अमाउंट सहित मुकदमा दायर किया गया है। आयोग का दावा है कि आपसी मिली भगत से सार्वजनिक संस्था को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से एकीकृत बिलिंग प्रणाली के लिए 5 वर्ष का अनुचित समझौता किया गया था। ये मामला सार्वजनिक संस्थानों में भ्रष्टाचार की गंभीरता को उजागर करता है। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में नेपाल में पहली बार सफलतापूर्वक लिंग परिवर्तन सर्जरी की गई है। सर्जरी जनकपुर की 25 वर्षीय एक ट्रांसजेंडर महिला पर की गई, जिसमें महिला जननांगों का पुनर्निर्माण किया गया। अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी विभाग द्वारा जेठ 12 गते से 15 गते के बीच आयोजित विशेष शिविर में ये ऑपरेशन किया गया। इस दौरान मरीज के चेहरे और स्तनों की भी सर्जरी की गई। अस्पताल के प्रवक्ता और सह प्राध्यापक डॉक्टर गोपाल सेढ़ाई ने बताया कि अब ये सेवा नेपाल में ही नियमित रूप से उपलब्ध होगी, जिससे ट्रांसजेंडर समुदाय को विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कृषि एवं पशु पक्षी विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी ने कहा कि देश के किसानों को इस वर्ष भी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त रासायनिक खाद नहीं मिल पाएगी। राष्ट्रीय सभा की विकास, आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति की सिंह दरबार में हुई बैठक में मंत्री अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष बाजार में 13,00,000 टन रासायनिक खाद की आवश्यकता है, लेकिन सरकार केवल 4,50,000 टन खाद की ही उपलब्ध करा पाई है। मंत्री अधिकारी ने जानकारी दी कि सरकार के पास उपलब्ध 4,50,000 टन रासायनिक खाद को प्रदेश सरकारों के माध्यम से सभी स्थानीय तहों पर वितरित किया जा रहा है। उन्होंने बजट अभाव को पर्याप्त खाद आयात न कर पाने का मुख्य कारण बताया। अधिकारी ने कहा, हमने पिछले वर्षों की तुलना में जैविक खाद के प्रयोग को प्राथमिकता दी है, लेकिन पूर्ण रूप से खाद्य सुरक्षा तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। बैठक में सांसदों ने किसानों को समय पर रासायनिक खाद उपलब्ध कराने, कृषि उत्पादों के लिए बाजार व्यवस्था सुधारने और सिंचाई सुविधा पर विशेष ध्यान देने की मांग की। सांसदों ने सरकार से देश में ही रासायनिक खाद कारखाना स्थापित करने और जमीन को बंजर न होने देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने का सुझाव भी दिया। दलों के बीच चर्चा और सभामुख के बार बार के प्रयास के बावजूद सहमति नहीं बन पाने के बाद कारण प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक भी कार्यसूची पर चर्चा किए बिना स्थगित कर दी गई। बैठक को शाम 6:15 बजे शुरू होनी थी, लेकिन मुख्य विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा उठकर विरोध पैदा करने के बाद सभामुख देवराज खिमरे ने अगली बैठक सोमवार दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की। बैठक में नेकपा, माओवादी केंद्र, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और नेकपा एकीकृत समाजवादी सहित विपक्षी दलों के सांसदों ने उठकर विरोध जताया। विपक्षी दल विजिट वीजा प्रकरण में गृहमंत्री रमेश लेखक की संलग्नता का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर पिछले जेठ 12 गते से संसद की कार्यवाही अवरुद्ध चल रही है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज स्पष्ट किया कि सत्तारूढ़ गठबंधन के साझेदार दलों के बीच कोई मतभेद नहीं है। कीर्तिपुर में अखिल नेपाल राष्ट्रीय स्वतंत्र विद्यार्थी संघ के 24वें राष्ट्रीय महाधिवेशन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि हमारी सरकार स्थिरता, सुशासन और विकास के लिए सही नीतियों के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि दोनों दलों के बीच हुए समझौते के अनुसार अगले 13 महीने के बाद नेपाली कांग्रेस को सरकार की बागडोर सौंपी जाएगी, जिसके बाद एमाले सरकार में शामिल होगा। युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि देश के विकास के लिए युवाओं को सूचना प्रविधि में निपुण होना चाहिए। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने में युवाओं को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। हेटौड़ा काठमांडू को जोड़ने वाला कांतिपथ मार्ग आज सुबह 11 बजे से पूरी तरह से यातायात के लिए खोल दिया गया है। मकवानपुर की भीमफेदी गांव पालिका वार्ड नंबर 8 स्थित बगवा खोला पर बेली ब्रिज के निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इस मार्ग को फिर से शुरू किया गया है। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता DSP श्याम अर्याल ने दी। सार्वजनिक सेवा प्रसारण PSB नेपाल के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ महेन्द्र विष्ट ने आज सुदूर पश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह और प्रदेश मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण वार्ता की। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में हुई इस बैठक में डॉ विष्ट ने रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन के प्रसारण क्षमता विस्तार, कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुधार और तथा धनगढ़ी में ब्यूरो कार्यालय स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री से सहयोग की अपील की। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जातीय तनाव एक बार फिर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है और 5 जिलों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई है। मणिपुर में मेईतेई वैष्णव हिंदू समुदाय और कुकी जोमी जनजाति ईसाई समुदायों के बीच पुराने तनाव ने हिंसक रूप ले लिया है। हाल के दिनों में भूमि आरक्षण और प्रशासनिक अधिकारों को लेकर विवाद बढ़ा है। पिछले कुछ दिनों में दोनों समुदायों के बीच झड़पें हुई हैं, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं और कुछ मकानों व दुकानों में आगजनी की गई है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मणिपुर में मेईतेई और कुकी समुदायों के बीच तनाव मई 2023 से ही चल रहा है, जब एक न्यायिक आदेश के बाद आदिवासी समुदायों को अनुचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर हिंसा भड़क उठी थी। तब से राज्य में कई बार हिंसक झड़पें हो चुकी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अख्तियार द्वारा नेपाल टेलीकॉम के तत्कालीन प्रबंध निर्देशक सुनील पौडेल और वर्तमान प्रबंध निर्देशक संगीता पहाड़ी सहित 18 लोगों के खिलाफ विशेष अदालत में मामला किया गया दर्ज। महाराजगंज स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में लिंग परिवर्तन से संबंधित शल्य क्रिया हुई सफलतापूर्वक पूरी। सत्ता साझेदार दलों के बीच कोई मतभेद नहीं है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया स्पष्ट। और भारत के मणिपुर राज्य में जातीय तनाव बढ़ने के बाद कुछ जिलों में लगाया गया कर्फ्यू और 5 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।